सत्यवचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु, तू आशीष मुझको दे प्रभु। तेरा प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही ते प्रकाश मुझ में हो प्रभु, तेरा ही तेज मुझ में हो प्रभु। प्यार का तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। तू है मसीह प्यार का, तेरा प्यार मुझ में हो, सत्य तू प्रभु, तेरी सच्चाई मुझ में हो। यीशु तेरी रूह से मुझे भर दे प्रभु।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके आनंदित हैं और आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। उन नए मित्रों का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब बाइबल की पुस्तक में से नए नियम की पुस्तक से दूसरे कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि हम एक नई सृष्टि हैं, अर्थात जिसने मसीह यीशु पर विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा नहीं। जी हाँ, हम एक नई सृष्टि हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। इन बातों को हमने देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 18 पद से अपने अध्ययन को बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबको अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। इतना ही नहीं, हमारी विनती है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों पर अपने अनुग्रह प्रदान करें, विशेष करके जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी प्रकार की बोझ से दबे हुए हैं, आप उनकी सहायता करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ निकालिएगा दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद, जहां से हम अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अब हम पौलुस के द्वारा इसकी चर्चा को भी सुनेंगे। निकाले मेरे साथ दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद। लिखा हुआ है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। जी हाँ, मेल करवाने की सेवा वास्तव में सर्वत्र भटके हुओं के लिए परमेश्वर की पुकार है कि वे अपने पाप, बोझ और समस्याएं तथा कष्टों को लेकर परमेश्वर के पास मेल करने के लिए आ जाएं। यह शब्द मेल मिलाप इस पद में दो बार आया है और अगले पद में दो बार आएगा तथा पद 20 में भी एक बार आया है। यद्यपि पद 21 में यह शब्द नहीं है, परंतु वह पद इसका सारांश है। यह एक सर्वाधिक महत्व का विषय है और हम इस महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मेल मिलाप का अर्थ उद्धार नहीं है। मेल करना एक कदम आगे है। यह हमारे पापों की क्षमा से अधिक हमारे दंड की क्षमा से भी बढ़कर है। मेल करने का अर्थ है पूर्ण रूपेण परिवर्तित संबंध। इसका अर्थ है अमूल्य परिवर्तन। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। चूंकि नहीं, मेल मिला परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। अगले पद में भी इसी बात को दोहराया गया है, जैसा कि हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ध्यान दीजिए, मेल मिलाप एक ऐसी सेवा है जिसमें आमूल परिवर्तन आ जाता है। अब प्रश्न यह है कि किसमें आमूल परिवर्तन आता है? परमेश्वर तो बदलता नहीं, वह कल, आज और सदैव एक सा है। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। जी हाँ, हम संसार को देखें तो समझ में आता है कि वह पाप के मार्ग पर है। यशाया कहता है 53 अध्याय उसके 6 पद में, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। यह मसीह के ही द्वारा है कि परमेश्वर संसार का स्वयं से मेल कराता है। मसीह की मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप की यह श्रेष्ठ सेवा मसीह का काम है। मेरे प्रियो, इस संदर्भ में मैं कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 20 से 22 पद को पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। इसकी तुलना फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसके 10 से करें, जहां लिखा है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के नीचे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है नरक। कुलुसियों के पत्र में केवल स्वर्ग और पृथ्वी का उल्लेख है, नरक का मेल परमेश्वर से नहीं है। नरक के भागी केवल घुटने टेकेंगे। जी हाँ, उनसे मेल नहीं किया जाएगा। केवल स्वर्ग और पृथ्वी के निवासी परमेश्वर को देखेंगे और मेल करेंगे। कुलुसियों के पत्र 1 अध्याय 21 और 22 पद में लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। मसीह की मृत्यु के द्वारा ही संसार का परमेश्वर से मेल संभव हुआ। ध्यान रखें, परमेश्वर का मेल नहीं हुआ है, वह बदला भी नहीं है। संसार की दशा बदल गई है। क्यों? क्योंकि मसीह मर गया है। जब आदम ने अदन की वाटिका में रहते हुए पाप किया, तब पवित्र परमेश्वर उसे बचाने के लिए नीचे नहीं आ गया, अर्थात वह नहीं आ पाया था। परमेश्वर को उसके पाप के लिए कुछ करना था, उसे दंड तो देना ही था, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 2:17 के अनुसार पढ़ते हैं कि उसे मरना था, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर यहेजकेल के माध्यम से कहता है, यहेजकेल की पुस्तक 18:20 में, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। अदन की वाटिका में वर्जित फल खाते ही आदम आत्मिक रूप से मर गया और 900 वर्ष बाद शारीरिक रूप से मरा। जी हाँ, आत्मिक मृत्यु के कारण वह परमेश्वर से पृथक और दूर हो गया था। अब उसमें परमेश्वर के लिए स्थान नहीं था। संसार की भी यही दशा है और परमेश्वर के लिए दंड देना उसे आवश्यक है। मसीह की मृत्यु के कारण अब संसार की दशा बदल गई है। आज परमेश्वर की बाहें इस पतित संसार के लिए फैली हुई हैं। वह कहता है, तुम मेरे पास आ सकते हो। जी हाँ, संसार का सबसे बड़ा पापी उसके पास आ सकता है। आज आप कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी भयंकर पाप में जीवन क्यों ना बिता रहे हो, आज परमेश्वर आपसे भी कहता है कि आप उसके पास आ सकते हैं। आज आप चाहे जो भी हो उसके पास आ सकते हैं, क्योंकि मसीह यीशु संसार के लिए मरा। वह आपके पापों के लिए मरा, आपके बदले में मरा, ताकि आप उस भयानक मृत्यु से, उस नरकमय जिंदगी से बच जाएं। पवित्र परमेश्वर अब हमें दंड नहीं देता है। वह अब उन सबको बचाने के लिए नीचे आ सकता है जो उसके पास आते हैं। मसीह यीशु ने सबका दंड उठा लिया कि संसार का सबसे मेल हो। आपको परमेश्वर का पक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके सिर पर डंडा मारने की प्रतीक्षा में नहीं है कि जब आप उसके पास आए तो वह आपको डंडा मारे। वह आपसे अप्रसन्न नहीं है, वह आपसे घृणा नहीं करता है। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, वह आपसे प्रेम करता है। वह चाहता है कि आप उसे जान लें। वह चाहता है कि आप उसके पास किसी भी तरह से पहुंच जाएं, ताकि आपका वह उद्धार कर सके। मसीह मनुष्य के पापों का दोष लगाने नहीं, उसका दंड चुकाने आया था। मनुष्यों को पाप से बचाने के लिए आया था, छुटकारा देने के लिए आया था। इसीलिए वचन में साफ साफ उसने कहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, वह आपको ढूंढने आया ताकि आप उद्धार पाएं। वे विचार में पकड़ी गई स्त्री इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रभु यीशु ने धर्म का स्वांग रचने वालों से कहा था, जिसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:11 में पढ़ते हैं, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और वह भूमि पर कुछ लिखने लगा। यर्मिया 17:13 में परमेश्वर एक अति रोचक बात कहता है, जो तुझ से भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहवा को त्याग दिया है। आगे लिखा है कि उन्होंने यहवा को त्याग दिया है। वृद्ध फरीसियों से लेकर युवा फरीसी तक सब ने उसे त्याग दिया है। वृद्ध फरीसियों में उन युवा फरीसियों से अधिक समझ थी जो अधिक समय वहां रुके। मेरे विचार में एक वृद्ध फरीसी का अवैध संबंध कुरिन्थ नगर में एक स्त्री के साथ था। वह सोचता था कि उसके इस भेद को कोई नहीं जानता है और न ही कोई जान पाएगा, जैसा कि आज हमारे बहुत से युवा भाई बहन और बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग सोचते हैं कि जो भी जीवन वो जी रहे हैं इसे कोई भी नहीं जानता। परंतु प्रभु तो अंतर्यामी है, वह सब बातें जानता है, आपके जीवन को जानता है जिसे आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रभु यीशु ने शायद उस स्त्री का नाम भूमि पर लिखा और उस वृद्ध फरीसी ने उसे पढ़ा और कहा, ओह मुझे याद आ गया, मुझे किसी से मिलना है, और वह वहां से चुपचाप भाग निकला। शीघ्र ही वे सब वहां से निकल गए और केवल यीशु ही वहां पर रह गया। एकमात्र मनुष्य जो उसे पत्थर मार सकता था उसने उसे नहीं मारा। उसने पूछा, यूहन्ना 8:10-11 में, हे नारी वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप न करना। मेरे मित्रों, परमेश्वर मसीह में संसार का अपने से मेल करा रहा था, उनके पाप उन पर आरोपित नहीं कर रहा था, उनके दोष वह नहीं ढूंढ रहा था। यीशु ने उस स्त्री के पापों को अनदेखा नहीं किया, वह तो उन्हीं पापों के लिए क्रूस पर मरने जा रहा था जो वह कर रही थी। उसका वह दोष प्रभु यीशु पर आना था, अतः उस स्त्री के विश्वास के कारण उसने उसे निर्दोष बनाकर विदा किया। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे पढ़ें। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5:20 में लिखा हुआ है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। राजदूत कौन होता है? राजदूत सर्वोच्च पद का नेता होता है, जिसे अन्य सरकार के राज्य में रखा जाता है या अपनी सरकार का प्रभुताधारी प्रतिनिधि होता है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, हम विदेशी शासन में निवास करते हैं। पत्रस कहता है कि हम यहाँ तीर्थ यात्री एवं परदेशी हैं। फिलिपियों की पत्री 3:20 में पौलुस कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। अब क्योंकि हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, हम यहाँ के राजदूत हैं, हम एक परदेश में हैं, जहाँ पर हमें अपने राजा के प्रति प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर रखा गया है। जी हाँ, जब दो सरकारें मित्रता के संबंधों में होती हैं, तब वे एक दूसरे के देश में अपने अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। परमेश्वर इस संसार के साथ अब भी मित्रता के संबंध रखता है, उसने हमारे लिए राजदूत भेजे हैं। एक दिन वह अपने राजदूत को बुला लेगा, उस दिन न्याय होगा। जब मनुष्य ने पाप किया, तब परमेश्वर ने इस संसार से मुंह मोड़ लिया, परंतु परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मृत्यु सहने के लिए, मरने के लिए भेज दिया। अब परमेश्वर बाहें फैलाकर संसार से कह सकता है, तुम मेरे पास आ सकते हो, हम उसके राजदूत हैं। उसके राजदूत होने के कारण हमें मनुष्यों से कहना है, परमेश्वर आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर मनुष्य से जो करने को कहता है वह बस इतना ही है, आओ। परमेश्वर आपसे हिसाब चुकता नहीं करेगा, वह आपको दंड देना नहीं चाहता है, वह आप पर हाथ डालना नहीं चाहता है, वह तो हर जगह से मनुष्यों को अपने पास बुलाना चाहता है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है, वह आपकी चिंता करता है, हर एक मनुष्य जो इस संसार में रहते हैं उनसे प्रेम करता है। वह आपके लिए, उस भाई के लिए, मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि मुझे और आपको अनंत जीवन प्रदान करे। मेरे मित्रों, आज का दिन महान है और यह हमारा सौभाग्य है कि आपसे कहें, आप परमेश्वर से मेल कर लो। वह केवल इतना ही कहता है कि आप उसके पास आ जाएं। वह यह काम कैसे करता है? यह इसलिए हो सकता है कि मसीह ने हमारे पाप एवं सब अनर्थ को अपने ऊपर ले लिया, उठा लिया। किसी ने कहा, गिरा उस पर दिव्य प्रतिकार, ओ ले डूबता नरक में संपूर्ण संसार, उठाया उसने चयनित जाति के लिए और बना शरण स्थल हमारे लिए। मेरे मित्रों, परमेश्वर का मेल हो गया है। आपको उसका पक्ष पाने के लिए एक भी काम नहीं करना है, आपको परमेश्वर का हृदय पिघलाने के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं है। वह आपसे प्रेम करता है, वह आपका उद्धार करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके राज्य में फिर से वापस आ जाएं। जिस प्रकार उसने मनुष्य को रचा, आदम को रचा, और पाप में गिरने से पहले परमेश्वर उसके साथ संगति रखता था, उसी प्रकार वह आज मुझसे और आपसे संगति रखना चाहता है, ताकि हम बच जाएं और परमेश्वर के राज्य का आनंद लें। मेरे मित्रों, आइए हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5:21 को पढ़ें। लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वह जो पाप को नहीं जानता था इस संसार में आया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। उसने मुझे अपना स्थान दे दिया, धार्मिकता के आवृत। उसने यहाँ मेरा नरक अपने ऊपर ले लिया कि मुझे वहाँ ऊपर उसका स्वर्ग मिले। उसने मेरे लिए यह किया ताकि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूँ। मेरे मित्रों, यहाँ पर एक मैं छोटी सी कहानी के द्वारा आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। एक परिवार था और उसमें परिवार में पति पत्नी और दो बेटे थे, और जब वे कार में जा रहे थे अचानक उनकी दुर्घटना घटी जिसमें माता पिता की मृत्यु हो गई और ये दोनों छोटे बच्चे रह गए। और ऐसा हुआ कि उनके परिवार के अन्य रिश्तेदारों ने उनका कोई भी ध्यान नहीं दिया और ये बच्चे अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लगे। बड़ा भाई कुछ समझदार था और परमेश्वर के वचन को पढ़ता और छोटे भाई को समझाता, लेकिन छोटा भाई कुछ नटखट था और हमेशा बुरी संगति में बढ़ता गया। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह चोरी करने लगा और बुरे संगति में रहते हुए शराब पीने लगा और अन्य प्रकार के बुरे दोस्तों से मिल गया, और यहाँ तक कि उसे कई बार जेल में जाना पड़ा। और तब उसके बड़े भाई ने उससे कहा, बेटा मेरे भाई ऐसा मत करो, लेकिन वह वैसा ही करता रहा जैसा वह चाहता था। और एक दिन की बात है कि वह एक दोस्त के साथ में जुआ खेल रहा था और उसी के दौरान उसकी एक से लड़ाई हो गई और उसने छुरेबाजी की, और ऐसा हुआ कि इस भाई ने उससे छुरा लेकर के दूसरे को मार दिया। तब ऐसा हुआ कि जिसे लगा था छुरा वह गिरकर मर गया, और छोटा भाई डर से भागते हुए अपने घर तक पहुंचा जो खून से लथपथ था, नशे में था। बड़े भाई से कहा, भैया आप मुझे बचा लो, भैया आप बचा लो, नहीं तो लोग मुझे ले जाएंगे। उसने सोचा, क्या बात है, मेरा छोटा भाई इतना परेशान क्यों है। उसने दरवाजा खोला, छोटे भाई को देखा और उसके हाथ में चक्कू और खून से सने हुए वस्त्र देखे। अपने भाई से कहा कि छोटे भाई एक काम करो, ये चक्कू मुझे दे दो। उसने उससे चक्कू ले लिया, और इतना ही नहीं, इसके बाद उसने कहा अपने वस्त्र उतार दो, और बड़े भाई ने अपनी शर्ट उतार कर अपने छोटे भाई को दे दी और उससे कहा कि तुम जाकर छिप जाओ। और ऐसा ही हुआ कि छोटा भाई छिप गया और बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के वस्त्र को पहन लिया और उस चक्कू को अपने हाथ में ले लिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुई, उसने दरवाजा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने देखा कि इसके हाथ रंगे हुए हैं खून से और हाथ में चक्कू है और उसके वस्त्र भी खून से सने हुए हैं। उसने उसे अरेस्ट किया और उसे जेल ले गए। उसका छोटा भाई इतना डरा हुआ था कि वह बाहर नहीं निकला। तब अदालत में उसके लिए केस फाइल हुआ और उसने कबूल किया कि यह हत्या उसने की है, और तब उसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। और एक दिन ऐसा हुआ कि टाइम निर्धारित किया गया, एक समय निर्धारित किया गया कि उसे फांसी की सजा दी जाए। और तब किसी ने उसके छोटे भाई को बताया कि तुम्हारे बड़े भाई को फांसी होने वाली है। तब वह बहुत विचलित हो गया क्योंकि वह जानता था कि वह स्वयं दोषी है लेकिन उसका बड़ा भाई निर्दोष है। तब वह भागते हुए उस अदालत की ओर जाने लगा जहां उसे फांसी लगने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वह वहां पर पहुंचता उसके भाई को फांसी लग चुकी थी। जब वहां पर वह पहुंचा तो उसने अपने बड़े भाई को लटके हुए देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यह निर्दोष है, इसे छोड़ दो, दोषी मैं हूं, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन मित्रों, यह बहुत देर हो चुका था, उसका भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। क्यों? क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्रेम करता था और उसके पास अपने छोटे भाई को बचाने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं था। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह ने भी मेरे लिए और आपके लिए भी यही काम किया है। मैंने पाप किया, आपने पाप किया, आपने चोरी, हत्या, व्यभिचार, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, लुचपन और तमाम प्रकार के नशीले पदार्थों की सेवाएं की हैं। आप बुरे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने वस्त्र आपको दे दिए और आपके सारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया, और वह आपके लिए और मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए, सारे पापों को लेकर क्रूस पर मर गया ताकि मैं और आप बच जाएं। आज आप और मैं जीवित हैं, इसका कारण यही है कि कोई मेरे लिए और मेरे बदले में, आपके बदले में मर गया है, और वही प्रभु यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया और जी उठा, और आज वह आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। मेरे मित्रों, क्या आप परमेश्वर का अद्भुत वचन किसी को सुनाने में सफल हुए हैं? क्या आप चाहते हैं कि ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचे ताकि उस बात को वह भी जान जाए कि उसके लिए कोई मरा है? आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप क्या कर रहे हैं कि भटके हुए इस संसार को परमेश्वर के मेल मिलाप का यह वचन सुनाए? परमेश्वर ने मेल कर लिया है, वह कल आज और सदा एक सा ही है। वह आज भी आपसे प्रेम करता है, वह आपके लिए आज भी ठीक वैसी ही संवेदना रखता है जैसी उसने उस दिन रखी थी जिस दिन मसीह आपके लिए वरन संपूर्ण संसार के लिए क्रूस पर मर गया था। संसार को आज यही सुनाने की आवश्यकता है, उसने संसार का अपने से मेल किया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि मन फिराकर उसमें विश्वास करें, उसके पास आ जाएं और अपने पापों का पश्चाताप करें और निश्चय जानें कि परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। वह चाहते हैं कि आप उसके पास आ जाएं। जी हाँ, यदि आज आप इस वचन को सुन रहे हैं तो अपने जीवन को कठोर मत कीजिए, उसके पास आ जाइए और अपने पापों को मुड़ करके देखिए कि आपको उसकी सजा क्या मिलनी चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने आपके पापों की सजा अपने ऊपर में ले ली है। मेरे प्रिय मित्रों, आज हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप दें, क्योंकि वह चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए, आप बचाए जाएं, आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है और अपने जीवन के लिए एक सही और उत्तम निर्णय लिया है। प्रभु यीशु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे एवं आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। पवित्र तू प्रभु, तेरी पवित्रता मुझ में हो, शुद्ध तू प्रभु, तेरी शुद्धता मुझ में हो। तेरा ही रूप सदा हो मुझ में प्रभु, प्रभु।